napakakahinga mo.
Nakadugurong sende ala rasuli kalim ang mga. Dari mga tanong gusto ko, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ne farmaya ke main har us aadmi ke liye jannat mein ghar dilane ki zamanat de raha hu, zimmedari le raha hu ke main usko jannat ke andar ghar dila kar rahunga. Aapne farmaya ye har wo aadmi hai ke jo haq par hone ke bawajood jhagde ko chhod de, हक पर है इसके बावजूद अगर उसने झगड़े को छोड़ दिया, आपने फरमाया हर ऐसे मर्द पर हर ऐसी औरत के लिए मैं जन्नत में एक बहुत बड़ा महल दिलाने की जमानत ले रहा हूं. कितनी आसान जन्नत है, घर में से रास्ता जाना है. जन्नत का रास्ता घरों से होकर जाता है. मियां बीवी का आपस में झगड़ा है एक हक पर एक नाहक पर. आपने फरमाया जिस किसी ने हक पर होने के बावजूद अपने हक को जाने दिया और उसने हक पर होने के बावजूद झगड़े को छोड़ दिया, आपने फरमाया ऐसे मर्द और शौहर के लिए और ऐसी बीवी के लिए मैं जन्नत के अंदर एक बेहतरीन घर दिलाने की जमानत दे रहा हूं. और अल्लाह का नबी जिसकी गारंटी दे दे उसमें कोई शक नहीं हो सकता. आपने फरमाया मैं जन्नत के बिल्कुल बीचों बीच, ये तो आम बात थी कि जन्नत में, आपने फरमाया जन्नत के बिल्कुल बीच में एक महल दिलाने की जिम्मेदारी ले रहा हूं हर उस आदमी के लिए जो झूठ बोलना छोड़ दे, झूठ न बोले. ये कोई मुश्किल नहीं, झूठ को तर्क कर देगा. अल्लाह के हबीब ने फरमाया मैं उसके लिए जन्नत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा महल दिलाने की जिम्मेदारी ले रहा हूं, पर हमारा नबी इंशाल्लाह दिलाकर रहेगा. आपने फरमाया एक आदमी जब आपके पास आया कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे अंदर चार बड़े ऐब हैं. कहा कौन से ऐब? वो कहने लगा मैं जानी हूं, जिना का आदि हूं. फिर उसने कहा कि मैं शराब का आदि हूं. नंबर तीन चोरी का आदि हूं, गुनाह कबीरा. और मैं झूठ का आदि हूं. लेकिन या रसूल अल्लाह आपके खातिर आपकी शर्म में सिर्फ एक गुना छोड़ने के लिए तैयार हूं, बाकी तीन नहीं, कोई भी एक गुना छोड़ने के लिए तैयार हूं. आपने ऐसा में नहीं कहा चोरी मत करो, आपने ऐसा नहीं कहा जिना न करो, आपने ऐसा नहीं कहा शराब न पियो, आपने कहा झूठ बोलना छोड़ दो. वो भी ताज्जुब करने लगा कि तीन गुना में से एक भी गुना आपने रोकने के लिए नहीं कहा, झूठ के लिए आपने क्यों फरमाया. वो बोल के चला गया, अल्लाह के हबीब से हाथ मिला लिया. आपने फरमाया कभी भी झूठ न बोलना. हो गया रात का वक्त हुआ, दिल ने चाहा कि चलो रात का अंधेरा है शराब पी लो. जैसे ही शराब की बोतल उसने हाथ में ली तो सोचने लगा कि अगर मैंने पी लिया और सुबह अल्लाह के नबी ने पूछा कि भाई रात कैसे गुजरी तो मैंने तो झूठ न बोलने का वचन दे दिया, अब मुझे सच बोलना पड़ेगा कि शराब पी है. अगर मैं ये कहूंगा पी है तो हद पड़ेगी, 80 कोड़े लगेंगे, सजा आएगी, सरकारी सजा आएगी. और अगर मैं बोलता हूं नहीं पी तो वचन टूट जाएगा, चलो शराब को तो छोड़ो. तो उसने शराब को रख दिया. फिर उसके नफ्स ने कहा कि रात के अंधेरे में तुम बदकारी भी करते हो तो बदकारी भी कर लो. आदत ने मजबूर किया, वो बदकारी के लिए बाहर भी निकला. लेकिन उसको वही ख्याल आया कि अगर मेरे नबी ने पूछ लिया कि तुम्हारी रात कैसे गुजरी तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैंने बदकारी नहीं की. अगर की है झूठ बोला तो वचन टूटेगा, सच बोलना पड़ेगा. अगर मैंने कहा मैंने की है तो सजाएगी, 100 कोड़े पड़ेंगे. शादीशुदा मर्द हो शादीशुदा औरत तो संसार किया जाता है, पत्थरों से मार दिया जाता है, सरकारी सजा है. और अगर बेशादीशुदा है तो उसकी सजा कुरान में 100 कोड़े बतलाई है। अगर मैंने कहा मैंने बदकारी की तो 100 कोड़े पड़ेंगे, और अगर मैं कहूंगा नहीं की तो फिर झूठ बोलूंगा। चलो इसको भी छोड़ो, इसी तरह चोरी करने का उसको दाइया पैदा हुआ, दिल के अंदर जज्बा पैदा हुआ, उसके दिल में वही बात आई कि अगर मैं कहता हूं कि चोरी कर दी है तो हाथ कटेगा, इसलिए कि शरीयत में चोर की सजा हाथ कटना है, और अगर मैं कहूं कि मैंने चोरी नहीं की तो झूठ बोलूंगा, और झूठ बोला तो अल्लाह के नबी को जो मैंने अहद दिया है इसको तोड़ दूंगा। चलो इस गुनाह को भी छोड़ देता हूं। हमारा नबी देखो माहिर नफ्सियात है, आपने फरमाया झूठ छोड़ दो, एक झूठ छोड़ने पर सच बोलना है सामने। अल्लाह ताला ने इसके सदते में 3 गुनाहों से उसको निजात दे दी, कितनी आसान जन्नत है। आपने फरमाया कि मैं जिस वक्त मेराज गया तो मुझे जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह ये जन्नत का दरवाजा है। अब उसके डबल दरवाजे थे, जैसे हमारी मस्जिद के डबल डबल दरवाजे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं क्या देखता हूं कि एक दरवाजे की 2 लकड़ियां, 2 पट होते हैं, हर दरवाजे के 2 पट होते हैं, यानी खड़ी लकड़ी। आपने फरमाया एक पट और दूसरा पट इन दोनों के दरमियान 40 साल के मसाफत है, एक दरवाजा। दूसरा दरवाजा इसी तरह 40 साल के मसाफत, 80 साल में खाली जन्नत का एक दरवाजा अगर तुम चलो और ऐसा तेज रफ्तार घोड़ा रात दिन चलता रहे तो 80 साल के बाद पहुंचेगा, कितना बड़ा दरवाजा। अल्लाह के नबी फरमाते जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर देखो क्या लिखा हुआ है। अल्लाह के नबी फरमाते जैसे ही मैंने देखा तो एक बेहतरीन खूबसूरत तख्ती लटकी हुई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो कोई अल्लाह के नाम पर सदका देगा तो हर सदके का बदला 10 गुना। इसके नीचे की लाइन में लिखा हुआ था जो कोई किसी मजबूर को कर्जा देगा कर्जा, उस कर्जे का बदला 18 गुना। अल्लाह के नबी फरमाते मैंने जिब्राइल को कहा जिब्राइल ये दोनों में फर्क क्यों है, सदका देने वाले के हक में आपने फरमाया 10 गुना और कर्जा दे रहा है तो उसको तो वापस मिल रहा है, तो जब उसने पैसे दिए और वक्त पर उसको वापस मिल गए तो इसका सवाब कम होना चाहिए। सदका में दिए हुए पैसे वापस नहीं आते, वो गए दे दिए उसको भूल जाने का, इसका तस्करा भी नहीं करने का। अगर तस्करा कर दिया किसी के सामने तो फिर तुम्हारी नेकियां जाया और बर्बाद हो जाएंगी, और जो कर्जा दिया है वो कर्जा तो वक्त पर वापस आना है। आपने पूछा जिब्राइल अगर यहां 10 गुना है तो इधर 5 गुना होना चाहिए पर यहां तो 18 गुना है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह जो कोई आदमी सवाल के लिए निकलता है सवाल के लिए तो सवाल तो वो भी करता है जिसके पास कुछ ना कुछ हुआ करता है। हमारे घर पे जो सवाली आते हैं उनका जेब भरा हुआ होता है लेकिन कभी भी उनके दिल में कनात नहीं आती कि मेरा कोठा पूरा हो गया मैं वापस चला जाऊं, इनके दिल में ऐसा नहीं आता। वो तो यही सोचेगा कि एक अगर जेब फिट हो गया तो दूसरा फिट करेंगे तीसरा फिट करेंगे, वो साहिल नहीं है, उसको साहिल नहीं कहते। आपने फरमाया कर्जा लेने वाला उसी वक्त कर्जा मांगेगा जब उसके पास कुछ भी नहीं होगा, ऐसे हाल में वो मांगेगा, और ये अपने पास होने के बावजूद सवाल कर रहा है। इसलिए मेरे परवरदिगार ने ऐसे आदमी की वक्ती तौर पर जो मदद की कर्जा दे करके अल्लाह तबारक व तआला उसको 18 गुना सवाब देगा। आपने फरमाया ये मैंने मेराज के मौके पर जन्नत के दरवाजे पर एक तख्ती देखी, बड़े खूबसूरत अल्फाज के अंदर ही लिखा हुआ था, इतनी आसान है जन्नत, सौदा करते आना चाहिए। दुनिया में आदमी वो ताजिर बड़ा होनहार होता है कि जिसको तिजारत करने की आवड़त होती है और उसको तिजारत करने की महारत होती है तो वो थोड़े पैसे डालकर भी ज्यादा पैसे निकाल लेता। अल्लाह ताला ने बहुत आसान जन्नत का रास्ता बना दिया कि तुम इस तरीके से जन्नत का सौदा करो। जाफर बिन सुलेमान बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, मालिक बिन दीनार के दोस्त थे, दोनों लंगोटे थे और वक्त के बड़े बड़े अहलुल्लाह में इनका शुमार हो रहा है। ये फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा बसरा से गुजर रहा था, मैंने मालिक बिन दीनार को अपने साथ लिया। बसरा के शहर में हम चल रहे थे, चलते चलते हम ऐसे महल के ऊपर पहुंचे कि जिसका तामीरी काम अभी चल रहा था। हमने उस महल के बाहर के खूबसूरत नौजवान को देखा, जाफर बिन सुलेमान फरमाते इतना खूबसूरत नौजवान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अल्लाह ने उसको इतनी बड़ी प्यारी जवानी अता फरमाई थी, इतनी प्यारी खूबसूरती अता फरमाई थी। हमने देखा कि क्या कर रहा है, तो खाली डायरेक्शन दे रहा था, कारीगर को कहता ये करो ये मत करो, किस तरह डिजाइन करो, इस तरीके से पत्थर लगाओ। गोया कि वो डिजाइनर था और महल के अंदर जितनी भी डिजाइन की गई थी उसकी इशारों पर की गई थी। तो मालिक बिन दीनार क्या कहने लगे, काश ये नौजवान जन्नत के खूबसूरत नौजवानों में शामिल हो जाता तो कितना अच्छा होता। जाफर बिन सुलेमान फरमाते हैं कि मालिक बिन दीनार को मैंने कहा कि उसकी मुलाकात करनी है, तो मालिक बिन दीनार ने फरमाया करनी चाहिए। उसके पास गए, मालिक बिन दीनार ने कहा कि बेटा ये तेरा महल है? कहा मेरा है। अभी इसको कितना टाइम लगेगा? अभी तो बहुत कम बाकी है और इसमें खर्चा भी बहुत लगेगा। आपने पूछा कि टोटल इसका खर्चा कितना होगा? का एक लाख दिरहम होंगे। तो आपने उसका हाथ पकड़ के एक तरफ ले गए। मालिक बिन दीनार ने कहा कि बेटा एक सौदा करने के लिए आया हूं। कहा कि ये तो नहीं बेचना है? कहा ये नहीं, इसको छोड़ दे दो, इस महल की बात नहीं कर रहा मैं तेरे साथ, जो तू खर्चा यहां करने वाला है मैं इन खर्चे के बदले में जन्नतुल फिरदौस का बेहतरीन महल तुझको दिला दूं कि ना तू कभी उसमें मरेगा ना तेरा महल कभी मरेगा, ये महल तो टूट जाएगा, और अगर तेरी हयाती में नहीं टूटा तो तू तो मर जाएगा, दोनों में से होने वाला है, और मैं तुझे लिख कर दू जमानत देता हूं कि तुझे महल मिल के रहेगा। वो लड़का कहने लगा कि मुझे एक रात की मुद्दत दो, मैं सोच रहा हूं आइंदा कल हम मुलाकात करेंगे, फिर जो भी मैं रात को तय करूंगा सुबह मैं आपको बता दूंगा। मालिक बिन दीनार दुआ करते रहे, उसके लिए बहुत दुआ करते रहे। फजर की नमाज के बाद सुबह सवेरे उस महल पर पहुंच गए। वो वहीं पर खड़ा था, वो चौकीदारी कर रहा था। जैसे ही मालिक बिन दीनार पर नजर पड़ी तो दौड़ता हुआ उनके सामने गया, कहने लगा कि हजरत सौदा तो मैं कर रहा हूं लेकिन पर्ची देनी पड़ेगी आपको। कहा पर्ची दे दे दे, मैंने कल तो कहा था तुमको पर्ची मिल जाएगी। तो उसने कागज कलम दिया, मालिक बिन दीनार ने लिखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पर्ची मालिक बिन दीनार जैसा फासिक लिख रहा है, गुनहगार लिख रहा है कि मैंने इस नौजवान को जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी इसकी ली है कि मैं जो यहां पर ये खर्चा कर रहा है जन्नतुल फिरदौस के अंदर, इसके लिए बेहतरीन महल का सौदा कर रहा हूं, और ये पैसे तेरी राह में चलत फिरत करने वालों पर मैं खर्च कर रहा हूं, ये लिख करके दे दिया। अचानक अभी चंद दिन गुजरे थे और इसकी तबीयत बिगड़ने लगी, लड़के की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने वो पर्ची संभाल कर रखी थी, जब गुस्ला लोगों ने देखा कि गुस्ला का वक्त है और इसके बदन के ऊपर कुछ चिपका हुआ है, तो देखा तो पर्ची थी अंदर और मालिक बिन दीनार की साइन की हुई थी और लिखा हुआ था कि इस पर्ची को कब्र में रख दिया जाए। गुस्ला करने वालों ने गुस्ल कराया, कफन पहना दिया और वही पर्ची कफन के अंदर रख दी, उसको दफन कर दिया। लोग दफन करके आ गए। एक हफ्ते के बाद मालिक बिन दीनार के दिल में आया कि लाओ ने उस नौजवान की हालत को देखे, आपको तो मालूम ही नहीं था कि दुनिया से रुखसत हो चुका है। एक मरतबा आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद के अंदर और बिल्कुल मिंबर और मेहराब के सामने ही नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक ऊपर से एक पर्ची गिरी। करामत है, पौरिया है कि जो खाली इशारे के जरिए से बड़े बड़े चर्च को तोड़ देते हो, तो ये बड़ी करामत है बुजुर्गों की। तो जैसे ही पर्ची गिरी तो आपने पर्ची ली और पर्ची के अंदर पढ़ा तो लिखा हुआ था कि मालिक बिन दिनार तुम्हारा सौदा सक्सेस है, कामयाब हो और बहुत बड़ा आलीशान हमने महल दिया और 60 गुना ज्यादा हमने उसको दिया है। अब मालिक बिन दिनार ने बड़ी पर्ची तो वो समझ गए कि शायद ये तो मर गया होगा, इसलिए कि दुनिया के अंदर तो बदला नहीं मिल सकता, आखिरत ही के अंदर मिल सकता है। आपने जाफर बिन सुलेमान को साथ में लिया, साथ में लेकर के गए, जाकर देखा तो उस मकान के ऊपर मातम था, कई नौजवान लड़के वहां पर बैठे हुए थे। पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथी का, कहा कि हजरत उसका तो इंतकाल हो गया। वहां पर कई नौजवान खड़े हुए, लाइन लग गई, कहने लगे कि हजरत मैं 2 लाख दिरहम में महल खरीदने के लिए तैयार हूं। एक ने कहा मैं 3 लाख दिरहम दे रहा हूं। हजरत ने कहा कि अब वो तो घड़ी होती है, वो चली गई, ये तो उस बंदे को आजमाना था, आजमाइश के अंदर, इम्तिहान के अंदर ये लड़का पास हो गया और अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी जवानी के बावजूद अपने पास बुला लिया और अपने पास बुला करके उसको जन्नत का महल अता कर दिया। जन्नतें खरीदी जाती हैं, जन्नतें खरीदी जाती हैं। हम कल ये समझते हैं कि नमाज पढ़ ली, रमजान आया, रोजा रख लिया और कुछ हमने सिला रहमी कर ली। मेरे भाइयों, जन्नत की कई शाखें हैं जो घरों के अंदर से गुजरती हैं, गरीबों के अंदर से गुजरती हैं, बेवाओं और यतीमों के बीच से रास्ते जाते हैं और अल्लाह के मखलूक पर रहम करने का रास्ता जाता है। इबादत तो एक शोबा है, दीन के कई शोबे हैं, ईमान की कई शाखें हैं, उन शाखों में इबादत भी एक शाख है, लेकिन इसके अलावा कई शाखें हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन शाखों के बदले हमें जन्नत अता फरमा रहा है। तो आप सुनते हैं जन्नत के अहवाल, लेकिन अभी जन्नत शुरू नहीं हुई, जन्नत शुरू नहीं हुई। ये तो जन्नत के खाली सौदे किस तरह होते हैं, कितनी सस्ती जन्नत है और कितनी आसान जन्नत है, वो कुछ अमाल है जो हमारे बुजुर्गों और अकाबिरों ने किताबों के अंदर लिखे हैं, ये आपके सामने बयान हो रहे हैं। इसलिए हम इबादतों के साथ साथ अल्लाह और बंदों के हुकूक को अदा करें। देखो, अगर किसी ने अल्लाह के हुकूक अदा कर लिए, बंदों के नहीं किए, तो ये आदमी कामयाब नहीं। किसी ने बंदों के हुकूक अदा कर लिए और अल्लाह के हुकूक को अदा नहीं किया, ये भी कामयाब नहीं। एक तराजू ऊपर जाता है कि नीचे रह जाता है, दोनों हुकूक को अदा करने पड़ेंगे, अल्लाह के हुकूक भी और बंदों के हुकूक भी। और अल्लाह ने हमारे जिम्मे जो लगाया इनके हुकूक हम अदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत अदा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम उन कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताए हैं, सहाबा इकराम ने बताए हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए।
يا رب لك الحمد حمدا دائما على وعدك، ويا رب لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الزمان يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وأملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.